अंत या आरंभ। अब रोज़ी की बात सुनकर वो मैनेजर घटिया तरीके से मुस्कुराया और एंजल को देखकर फट पड़ा। तुम्हें सुनाई दिया मेरी बहन ने क्या कहा है? अगर तुम यहां से इस लड़की को सही सलामत वापस लेकर जाना चाहती हो तो तुम मेरे सामने झुको और अपनी नाक रगड़ो। अब आगे, उसके बाद मैं तुम्हें यहां से सही सलामत जाने दूंगा और पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। अब ये सुनकर तो एंजल की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वहीं आस्था का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आस्था एंजल को देखते हुए ना में सिर हिलाकर बोली, भाभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब तक अविनाश भैया यहां क्यों नहीं आए? आप उन्हें फोन करके बुलाओ ना। और ये छिपकली कौन है? अब जैसे ही आस्था ने अपनी पूरी देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए रोज़ी की ओर इशारा किया, रोज़ी के तन बदन में पूरी तरह आग लग गई थी। आज तक किसी ने उसके मुंह पर उसे छिपकली बोलने की हिम्मत नहीं की थी। फिलहाल रोज़ी को देखकर एंजल ने बेपरवाही से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने अविनाश को फ़ोन कर दिया है, उन्होंने ज़रूर मेरी आवाज़ सुन ली होगी, वो यहाँ आते ही होंगे। लेकिन जैसे ही एंजल ने फिर से अविनाश का नाम लिया, रोज़ी के तन बदन में एक बार फिर आग लग गई और वो एंजल के बालों को खींचते हुए उसे फटकारती लगी। तू नहीं सुधरेगी, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बॉस का नाम इस तरह से ले, और तू है कि लगातार मेरे बॉस का नाम लिए जा रही है। क्या तुझ में शर्म नाम की इतनी सी भी चीज़ नहीं है? रोज़ी को देखकर और अविनाश के बारे में किसी और औरत की बातें सुनकर आस्था को काफ़ी बुरा लग रहा था। वहीं एंजल भी जल भुन रही थी कि उसके रहते इस तरह कोई और लड़की उसी के पति के बारे में बातें कर रही है। इसी बीच मैनेजर गुस्से से घूरते हुए एंजल से बोला, देखो मेरे पास फालतू का समय नहीं है, अगर तुम अभी और इसी वक्त मेरे सामने झुककर मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम लोगों के पीछे बर्बाद करने के लिए, मेरे पास और भी बहुत काम है, और तुम लोगों की वजह से कब से सभी कस्टमर शॉपिंग करने से रुके हुए हैं, इसका नुकसान क्या तुम लोगों का बाप भरेगा? मैनेजर बड़े ही बदतमीजी से बात कर रहा था। वहीं आस्था लगातार अपनी गर्दन इधर उधर हिलाकर एंजल को मना कर रही थी कि वो मैनेजर की बात ना माने और उसके सामने बिल्कुल भी नाक ना रगड़े। लेकिन अब एंजल को कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि आस्था पुलिस के नाम से कितना ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अविनाश उसे आस्था के बारे में पहले ही सारी बातें बता चुका था। एंजल नहीं चाहती थी कि आस्था किसी सदमे में जाए या उसकी पुरानी कड़वी यादें ताज़ा हो जाएं। तभी एंजल ने मन में गुस्सा दबाते हुए सोचा, इन सब से तो बाद में भी हिसाब चुकता किया जा सकता है, वैसे भी अविनाश के आने पर तो इन्हें अच्छी खासी सज़ा मिलेंगी, लेकिन अभी आस्था को इस सिचुएशन से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। यही सोचते हुए एंजल ने गहरी सांस ली और मैनेजर की ओर बेमन से देखकर हामी भरते हुए बोली, ठीक है, मैं माफ़ी मांगने और तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आस्था को छोड़ दो। जैसे ही एंजल ने ये कहा तो ये सुनकर आस्था पूरी तरह से ठिठक गई और नामे सिर हिलाकर जोर से चिल्लाई, नहीं भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आप इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करेंगी, आप इस बेहुदा आदमी के सामने नहीं झुकेंगी, मैंने आपसे मना किया है ना? इतना सुनते ही एंजल ने आंखें बंद की और बेबसी से बोली, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वैसे भी इसका हिसाब हम बाद में चुकता कर सकते हैं और इसे अच्छी खासी सजा भी दिला सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसकी बात नहीं मानेंगे ये लोग हमें यहां से जाने नहीं देंगे। एंजल को इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हुए देख कहीं ना कहीं मैनेजर का चेहरा कन्फ्यूजन से भर गया था, लेकिन रोज़ी ने तुरंत मैनेजर का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाया, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये कैसी है, कितनी ज़्यादा चालबाज लड़की है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, आखिरकार पूरे 3 साल मैंने इसके साथ काम किया है। रोज़ी की बात सुनकर मैनेजर एक बार फिर अकड़ में आ गया और झल्लाते हुए बोला, ठीक है आओ फटाफट मेरे सामने आकर माफ़ी मांगो। एंजल ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठने ही वाली थी कि अचानक किसी ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अविनाश था। अविनाश जैसे ही वहां पहुंचा वैसे ही उसने एंजल को अपनी बाहों में भर लिया। एंजल जो अब तक अपने इमोशंस पर कंट्रोल किए हुए थी और उसने आंसू रोक रखे थे, वो अविनाश को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। आस्था अविनाश को आश्चर्य से देखकर बोली, अविनाश भैया। इतना सुनते ही रोज़ी और वो मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उनका घबराहट के मारे बुरा हाल था। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आस्था अविनाश की बहन निकलेगी। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ छलक रही थी। वो दोनों डरकर पीछे की ओर हटने लगे थे। उनके होंठ एकदम से कंपकंपाने लगे और टांगें भी थरथरा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनके शरीर से सारी जान निकल रही हो। अविनाश उस वक्त रोज़ी और मैनेजर को जलती हुई नज़रों से देख रहा था, जैसे ही उसकी आंखों से उनकी नजरें मिली, रोजी और मैनेजर दोनों पीछे हटने लगे। तभी अविनाश के बॉडीगार्ड्स ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब वहां का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पल भर में मैनेजर और रोजी दोनों अपने घुटनों के बल बैठ गए। जितनी भी महिला स्टाफ ने आस्था और एंजल के साथ बदतमीजी की थी, वो सब भी घुटनों के बल बैठी हुई थी। अविनाश गुस्से भरी आंखों से उन सबको घूर रहा था। फिर उसने अपने गार्ड की ओर कुछ इशारा किया। मैनेजर और फीमेल स्टाफ की अच्छी खासी धुलाई करवाई। चोटों के निशान के साथ वो सब अब वहीं बैठे हुए और रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन अविनाश का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी एक तरफ आस्था खड़ी थी और दूसरी तरफ एंजल। दोनों ही अविनाश का साथ पाकर चैन की सांस ले रहे थे, वरना कुछ देर पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये वक्त उनके लिए थमसा गया हो। अचानक एंजल के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और उसने अविनाश से पूछा, अविनाश, आपको कैसे पता चला कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं? फ्लैशबैक। अविनाश, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक जैसे ही उसका फोन बजा और उसने कॉम्प्लेक्स के रिसेप्शन का नंबर देखा तो वो थोड़ा चौंक गया। उसने आश्चर्य से सोचा, अगर एंजल या आस्था को उसे कॉल करना होता तो वे अपने मोबाइल से कॉल कर सकती थी, तो फिर इस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रिसेप्शन से अचानक कॉल क्यों आया? ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस नंबर से आने वाले कॉल्स को उसके अधीन काम करने वाले लोग ही हैंडल करते थे। फिलहाल जैसे ही अविनाश ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से बस इतना सुनाई दिया, हेल्प अविनाश। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, कॉल कट गया। अविनाश को शक हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत सीधा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ पहुंचा। अविनाश की बात सुनते ही एंजल एकदम से रोते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आज वक्त पर आ गए अविनाश, वरना ये लोग मुझे इसी तरह बेइज्जत करते रहते। अविनाश ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर गुस्से में उन सबकी ओर घूरते हुए बोला, तुम सबको अभी और इसी वक्त यहां से निकाला जाता है। आज के बाद तुम लोग यहां तो क्या इस देश में कहीं काम नहीं कर पाओगे। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। उन्होंने उन लोगों की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। वहीं रोजी की आंखों में खून उतर आया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिसे वो इतनी नफरत करती है, वही एंजल इस तरह उसकी मालकिन बन बैठेगी। सभी रो रोकर माफी मांग रहे थे। आस्था और एंजल पैरों में गिर रहे थे, लेकिन उस वक्त आस्था और एंजल किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं थी। दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में
वसुंधरा रश्मि के कहने पर किचन में तो आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, जिस प्रॉपर्टी पर मेरा राज होना चाहिए था, जहां की मालकिन मुझे होनी चाहिए थी, वहां मेरी हैसियत नौकरों से कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन बहुत जल्द मैं यहां सब बदल दूंगी और सब कुछ अपने नाम कर लूंगी। हालांकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अभी वो अपना असली रंग नहीं दिखा सकती। उसे जो भी करना है बहुत धैर्य और सब्र के साथ करना होगा, इसलिए उसने खुशी खुशी किचन में काम करना शुरू कर दिया। वसुंधरा को किचन में भेजने के बाद रश्मि ने रौनक, राधिका और वंशिका को देखते हुए अपने हाथ बांधे और अपनी आंखें मटकाते हुए पूछा, ये तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? रौनक अनजान बनते हुए यहां वहां देखने लगी और अगले ही पल कुछ सोचते हुए बोली, दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? रौनक ने पक्की सा फेस बनाकर जवाब दिया। रश्मि तुरंत आगे आई और रौनक का कान खींचते हुए एकदम से उसे डांटा, तू कितनी बदमाश है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर तूने ही इन दोनों को ये आइडिया दिया होगा, इतना शरारती का दिमाग इनका नहीं चलता। रौनक मासूम सी शक्ल बनाकर चिल्लाई, आ दी प्लीज प्लीज दी, पहले मेरे कान तो छोड़ दीजिए फिर बताती हूँ, आह प्लीज दी छोड़ दीजिए, एक्चुअली मुझे वो बंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपने देखा नहीं किस तरह से वो हवस भरी नजरों से हमें देख रहा था, बस एक बार मेरा आहान आ जाए उसके बाद देखना मैं उसकी कैसे पिटाई करवाती हूँ। रौनक की बातें सुनकर रश्मि के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। वहीं वंशिका और राधिका ने एक साथ पूछा, रश्मि दीदी आपकी आकाश भाई से कुछ बात हुई क्या? क्योंकि सुमित तो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहे और ध्रुव भी मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। उनकी बात सुनकर रश्मि ने शांत भाव से उन लोगों की ओर देखा और अगले ही पल आह भरी, फिर धीमी आवाज में उन्हें समझाना शुरू किया, देखो जैसा कि तुम लोगों को पता है वीर और वसुंधरा यहां आए हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, इस वक्त वो सब शायद अरमान के साथ फार्म हाउस पर होंगे उसे संभालने के लिए। रश्मि की आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। उसने आगे बताया, जब तक अरमान थोड़ा मेंटली ठीक नहीं हो जाता वो उसे लिए बिना घर नहीं आएंगे। हाँ उन्हें गए हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आकाश को मैसेज छोड़ देती हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे, ठीक है? रश्मि की बात खत्म होते ही सभी ने चुपचाप सिर हिलाया, मानो जैसे उनके मौन में सहमति और चिंता दोनों शामिल हों। वहीं फार्म हाउस पर भीतर माहौल भारी गया था। हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिकी हुई थी, किसी तरह अरमान होश में आ जाए। सबको अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था, न जाने अरमान की कितनी आदाश जा चुकी होगी। अरमान किसी को पहचान पाएगा या नहीं, नॉर्मल रहेगा या फिर अचानक आक्रामक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डर था ये था कहीं वो अंश और आस्था को ही न भूल जाए। यही सोच बार बार उनके दिल को चीर रही थी। अचानक मिनी हॉस्पिटल का दरवाजा खुला। एक नर्स तेजी से बाहर आई, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में उम्मीद लिए। किंग को होश आने वाला है और उनके शरीर में धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो गई है। ये सुनते ही सब जैसे बिजली की तरह चौकन्ने हो गए, अपने आप अंदर की ओर कदम बढ़ाने लगे। वहीं मारिया और टाइगर बिना किसी एक्सप्रेशन के मिनी हॉस्पिटल में ही खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्से की परतें साफ दिख रही थीं। मारिया के गाल लाल सुर्ख थे, जैसे हर बार गुस्सा दबाने पर होते थे। वो थक चुकी थी, एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से घंटों की भागदौड़, फिर भी वो खुद को मजबूती से संभाले वहां खड़ी रही। टाइगर ने गौर किया, मारिया बार बार अपनी उंगलियां मसल रही थी तो कभी अपनी पीठ को सहला रही थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मारिया इस वक्त किस हालत में है। वो बिना बोले आगे बढ़ा और उसकी पीठ को हल्के हल्के रब करने लगा। मारिया की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, थोड़ी राहत, जैसे ठंडी हवा का झोंका थकान से भरे कमरे में आ गया हो। तभी ध्रुव तेजी से उसके पास आया। दीदी, उसने नरमी से कहा, इस हालत में आपको ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, ना लगातार बैठना। आप पिछले 2 से 3 घंटे यहाँ खड़ी हैं, बस भाई के होश में आने का इंतजार करते हुए। उसकी बात सुनकर मारिया ने बस हल्का सा सिर हिलाया, उसमें जवाब देने की ताकत नहीं थी। ध्रुव ने इशारे से एक नर्स को बुलाया। कुछ ही देर में नर्स ट्रे में जूस लेकर आई। मारिया ने बिना एक पल गंवाए ग्लास उठा लिया, क्योंकि वो खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा वो भूखा नहीं रह सकता था। जूस पीने के बाद मारिया को काफी हद तक एनर्जी महसूस हुई। वो अब कुर्सी पर बैठी बैठी ही अरमान की ओर एकटक देखने लगी। अरमान की पलकें हल्की हल्की फड़फड़ा रही थीं, साथ ही उसके हाथ पैर भी धीरे धीरे हिलने लगे थे। कमरे में मौजूद हर कोई शख्स सांस रोके अरमान के पूरी तरह होश में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनटों में अरमान ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी पलकें पूरी तरह खुली, अचानक ही वो झटके से उठकर बैठ गया। उस पल उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसने 2-3 बार अपने कनपटियों को सहलाया, फिर आंखें पूरी तरह खोलकर अपने आसपास के माहौल को गौर से यहां वहां देखने लगा, जैसे हर चेहरा हर चीज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो।